नमस्कार भारत, आज है 17 अप्रैल दिन सोमवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। तुर्की के जनमत संग्रह में राष्ट्रपति अर्दोगान को मिली जीत, 2029 तक सत्ता में रहने का रास्ता साफ। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर, जहां इस साल होने हैं चुनाव, क्या इसकी वजह कोई चिंता तो नहीं?
जो लीडरशिप पनपनी चाहिए थी उनके 2014 में दिल्ली चले जाने के बाद, वो चीज एक वैक्यूम खड़ा हो गया।
फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर जताई चिंता।
ऐसे ही ये चलता गया तो मैं आपको एक वार्निंग दूं कि कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकल जाएगा।
होंगी अखबारों की सुर्खियाँ और खेल और खिलाड़ी, पर पहले विश्व समाचार।
तुर्की में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने को लेकर कराए गए जनमत संग्रह में राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान स्पष्ट बहुमत से जीत गए हैं। अब वो 2029 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अर्दोगान देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लेकर आएंगे। देश की दोनों विपक्षी पार्टियों ने मतगणना में अनियमितता का हवाला देते हुए कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगी। नई प्रणाली में प्रधानमंत्री के पद को खत्म कर दिया जाएगा और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में दे दी जाएंगी। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को जनमत संग्रह में नतीजों के कम अंतर और संवैधानिक संशोधन के दूरगामी प्रभावों को स्वीकार करना चाहिए। अर्दोगान अपने भाषण में मौत की सजा को शामिल करने की बात कह चुके हैं, जिस पर यूरोपीय यूनियन ने चेतावनी दी है कि इस तरह का कदम तुर्की को सदस्यता देने पर चल रही बातचीत को खत्म करने की दिशा में ले जा सकता है। वो फिलहाल रुके हुए हैं। जनमत संग्रह के बाद अर्दोगान की पहली सावधानी पूर्वक दी गई टिप्पणी के बाद यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने तुर्की को अपने अगले कदम पर विचार करने के लिए कहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने कहा है कि उत्तर कोरिया के धमकी वाले व्यवहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी है, जिसमें अब चीन भी शामिल है। एबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में जनरल मैकमास्टर ने कहा कि अपने सहयोगियों सहित अमरीका और चीन का नेतृत्व भी उत्तर कोरिया को लेकर अपना धैर्य खो रहा है। उनका कहना है कि अमरीका और चीन उत्तर कोरिया पर कई सारे विकल्पों पर साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
This latest missile test just fits into a pattern of provocative and destabilizing and threatening behavior.
उत्तर कोरिया में हाल के मिसाइल परीक्षण से वहां का शासन उकसाने, अस्थिर करने और धमकाने वाले व्यवहार के तहत आता है। इस तरह के हालात जारी नहीं रह सकते और मुझे लगता है कि इसे लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बन गई है, जिसमें चीन और चीनी नेतृत्व भी शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो ये स्वीकार नहीं करेंगे और इस क्षेत्र में अमरीका और उसके सहयोगी और साझेदार परमाणु हथियारों से लैस इस विरोधी शासन के खतरे के साए में रहें, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। जनरल मैकमास्टर अफगानिस्तान में हैं, जहां वो राष्ट्रपति अशरफ गनी से चरमपंथ से निपटने के मुद्दे पर बात करेंगे। अपने इंटरव्यू में मैकमास्टर ने अफगानिस्तान को बर्बरता और सभ्यता के बीच की आधुनिक सीमा में बताया। उन्होंने तालिबान और आईएस दोनों को सभ्य लोगों के लिए खतरा बताया। हाल में तालिबान के हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने एक अफगान टेलीविजन चैनल को बताया कि जो गुट अस्पताल के बिस्तरों में गोली मारता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के उपनगर कोलोनवा में एक कचरे का पहाड़ धंसने और इसमें लगी आग से मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। लोग अब पहाड़ में अभी भी धंसे हुए हैं, लेकिन उनके जिंदा बचे रहने की उम्मीद कम ही है। पुलिस का कहना है कि वातावरण इतना जहरीला था कि लगता नहीं है कि कोई बचा होगा। एक स्थानीय निवासी ने बीबीसी को बताया कि 20 और लोग मारे गए थे, लेकिन उनको ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर रोशन सेनवीराथन ने बचाव अभियान की जानकारी देते हुए कहा, अब तक हमने 1050 कर्मचारियों को बचाव कार्य में लगाया है। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग शुरू में बचा लिए गए थे और बचाव काम अब भी जारी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दिन की पहली सभा में आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। में कल एक जनमत संग्रह करवाया गया। इसमें लोगों से पूछा गया कि वो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जगह क्या राष्ट्रपति व्यवस्था को लागू करना चाहेंगे, और फैसला बदलाव के पक्ष में आया। इसका सीधा फायदा वर्तमान राष्ट्रपति रजेप तैयब अर्दोगान को होगा, जो अब फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेंगे, जो 2019 में होगा। और नई व्यवस्था में फिर से दो बार राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, यानी अर्दोगान अब 2029 तक तुर्की के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए तृप्ति श्रीवास्तव से।
तुर्की के आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक सुधार के लिए राष्ट्रपति रजेप तैयब अर्दोगान को चुन लिया गया है। तुर्की में संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति शासन प्रणाली के लिए करवाए गए जनमत संग्रह में राष्ट्रपति रजेप तैयब अर्दोगान स्पष्ट बहुमत से जीत गए हैं। जीत के बाद इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जैसा कि मैं आज वोट देते समय कह रहा था कि आज होने वाला संवैधानिक परिवर्तन कोई आम या साधारण परिवर्तन नहीं है। तुर्की के इतिहास में पहली बार तुर्की के लोगों ने इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव के लिए मतदान किया है। पहले संसद तय करती थी कि संविधान में बदलाव लाना है या नहीं, लेकिन आज पहली बार इस जनमत संग्रह के जरिए लोगों की इच्छा शक्ति दिखी है, और ये हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस जनमत संग्रह से अर्दोगान को नए अधिकार मिल सकते हैं। करीब 51.3% लोगों ने राष्ट्रपति शासन के पक्ष में हाँ को वोट किया, वहीं करीब 48.7% लोगों ने ना में वोट किया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मतदान में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने नतीजों में घालमेल किया है, और उन्होंने नतीजों को चुनौती देने की बात भी कही। विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के उपाध्यक्ष बुलंद तेजजान ने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी की गई है। मतगणना शुरू होने के बाद उच्च निर्वाचन आयोग के दो फैसले लेना इस जनमत संग्रह की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। जनमत संग्रह गंभीर वैधता से जुड़ी समस्या का सामना करेगा। चुनाव आयोग ने वोटिंग शुरू होने के बाद नियम बदल दिए थे। चुनाव कानून में साफ लिखा है कि बिना मोहर लगे मतपत्र मान्य नहीं होंगे। उच्च निर्वाचन आयोग ने इस कानून के अनुपालन में नोटिस जारी किया है, लेकिन मतगणना शुरू होने के बाद से ही निर्वाचन आयोग असफल रहा। जनमत संग्रह की सुरक्षा को नियंत्रण में रखने के बजाय ये सत्ताधारी पार्टी के लिए हेरा फेरी का जरिया बन गया। तुर्की में फैसला राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के पक्ष में गया है, जिसका मतलब है कि अर्दोगान साल 2029 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इस प्रणाली के लागू होने के बाद राष्ट्रपति को कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करने, फैसले जारी करने, वरिष्ठ न्यायाधीश चुनने और संसद को भंग करने की शक्तियाँ मिल जाएंगी। नई प्रणाली में प्रधानमंत्री के पद को खत्म कर दिया जाएगा और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में दे दी जाएंगी, जिसमें देश की नौकरशाही भी उनके नियंत्रण में होगी। अर्दोगान का कहना है कि नई प्रणाली फ्रांस और अमेरिका से मिलती जुलती होगी, और कुर्द विद्रोह, इस्लामिक चरमपंथ और पड़ोसी देश सीरिया में संघर्ष के बाद शरणार्थियों के प्रवेश से आए तूफान को शांत करेगी।
तुर्की के जनमत संग्रह में राष्ट्रपति अर्दोगान की जीत।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगता है कि अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी है। दो दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कल सूरत में एक बड़ा रोड शो किया। प्रधानमंत्री आज पाटीदार समाज की एक रैली में भी जाएंगे, जिन्होंने अपने आरक्षण आंदोलन से भाजपा के लिए खासी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो पाटीदारों को साथ लाना क्या अब भी चुनौती है भाजपा के लिए? हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने गांधीनगर में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार मिश्र से यही जानना चाहा।
उनका जो युवा वर्ग है, खास तौर से बीजेपी से नाखुश है, और वो लोग हार्दिक पटेल जिनको सिंबलाइज करते हैं, जो आरक्षण की मांग को लेकर के आगे चल रहे हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस कम्युनिटी है और कम्युनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 14% ये हैं गुजरात की पॉपुलेशन में, तकरीबन 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स इनके हैं और 42 MLA हैं। तो ये बड़ी ही स्ट्रांग कम्युनिटी है, और इन लोगों का बड़ा भारी रोल रहा है बीजेपी को पावर में लाने में और उनको सपोर्ट करके यहाँ तक लाने
में। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी साल 1998 से 1998 से सत्ता में है, चार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है लगातार। अगला विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने वाला है और ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद उससे भी जल्दी हो जाए। बीते 9 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का ये 8वां गुजरात दौरा है, क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी जीत का भरोसा नहीं है, उसे जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है?
दो तीन चीजें इसमें कारण रूप हैं। एक ये कि मोदी जी खुद यहाँ बहुत लंबे अरसे तक रहे और वो एक वटवृक्ष की तरह थे यहाँ, जिसके नीचे कोई चीज उगी नहीं, तो जो लीडरशिप पनपनी चाहिए थी उनके 2014 में दिल्ली चले जाने के बाद, वो चीज एक वैक्यूम खड़ा हो गया। उनके जो क्लोज फॉलोअर्स में से थे आनंदीबेन पटेल, वो मुख्यमंत्री बनी जब मोदी जी दिल्ली चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह और ये यूथ का एक तरीके का ये रिबेलियन सा था, तो वो लोग खड़े हो गए। और इसके पीछे बहुत से कारण रूप हैं, क्योंकि बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें हैं कि भाई ये चीज होगी, प्राइवेटाइजेशन हो चुका था एजुकेशन का, तो बच्चों ने जो है उनके माँ बाप लोगों ने बहुत पैसा खर्च करके उनको जब वो डिग्रीज लेकर के प्राइवेट स्कूल से पहुंच के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पहुंच करके बाहर निकले तो नौकरियों की बड़ी प्रॉब्लम रही, तो वो यूथ जो इस चीज को फेस करता रहा वो थोड़ा रेबेलियस हो, ये तो पाटीदार का मामला रहा। उसके बाद ओबीसी में भी कुछ असंतोष रहा है, दलितों का मामला भी बाद में उठ खड़ा हुआ, जिसकी जो कारण रूप बना कि आनंदीबेन को हटाना पड़ा और उनकी जगह विजय रूपानी आए गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर। तो कुल मिलाकर ये देखिए तो अलग अलग जो ग्रुप्स थे उन लोगों में एक असंतोष का माहौल रहा, जिससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा जिस तरह के प्रॉब्लम्स में रहा है।
ये थे गांधीनगर से वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार मिश्र। भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले कई महीनों से तनाव बरकरार है और अब श्रीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने प्रदेश में राज्यपाल का शासन लगाने की मांग की है। क्यों ऐसा चाहते हैं वो, उन्हीं से पूछा हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने।
हम 2 साल से ये देख रहे हैं कोई तरक्की नहीं है, बल्कि ये जो मुसीबत है ये और बढ़ रही है, नफरतें और बढ़ रही हैं, और अगर इन नफरतों को रुकाना है तो गवर्नर शासन के बगैर कुछ हो नहीं सकेगा। हम पहले भी यही कहते थे कि उसे 50% जो आपको फर्क लगेगा ओवरनाइट, क्योंकि जो 3 महीने गवर्नर शासन लगा था, जो फाइलें इतने साल नहीं निकली थी, गवर्नर साहब ने फौरन उनको निकाला और काम शुरू किया। मैं नहीं समझता हूँ ये सरकार 2 साल से नहीं कर सकी, आगे भी नहीं कर सकेगी, और हमारा जो ये मिशन है वो टोटल लोगों को ठीक करने का सारा फेल हो जाएगा।
लेकिन फारूक साहब, एक चुनी हुई सरकार है, लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया है, उसको अचानक ऐसे कैसे हटाया जा सकता है? आप तो खुद जमहूरियत में यकीन रखते हैं।
मैं आपको बताऊंगा, ठहरिए, मैं आपको बताऊंगा। ये हुकूमत जब आई थी, आप इन्हीं लोगों से पूछिए जो इनके खिलाफ है, इन्होंने जब वोट लिया था, इन्होंने वोट लिया था कि हम बीजेपी को के साथ नहीं जाएंगे। आज अगर आधा मसला वहां पे इसका है, वो जो विश्वासघात इनने लोगों के साथ किया है, वो गम गुस्सा लोगों के अंदर इतना भरा हुआ है कि इनको इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि उनके भाई हार जाते।
आप जहां से निर्वाचित हुए हैं वहां भी सिर्फ 7% वोटिंग हुई,
ठीक है,
निश्चित तौर पर जितनी वोटिंग हुई उसमें से ज्यादा आपको मिला, लेकिन करीब करीब 93% लोगों ने वोट नहीं डाला। कैसा आपको लग रहा है, क्या ये लोगों के प्रतिनिधि आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे?
साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ऐसा खूनी इलेक्शन कभी नहीं देखा, जहां लोगों को डराया गया, धमकाया गया, यहां तक कि 8 आदमियों की शहादत हो गई, तो ये कोई इलेक्शन था? ये तो मैं कहूंगा ये रेफरेंडम था इस हुकूमत के खिलाफ। को सिर्फ 7% दिख रहा है, ये 7% नहीं है, जिनने वोट नहीं दिया वो भी शामिल है इसमें।
आपको क्या लगता है फारूक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका समर्थन भी आपके साथ था?
क्यों नहीं था, उन्हें वोट नहीं दिया क्योंकि इतना गम और उनके ऊपर जो जुल्म था वो भी, और गुस्सा जो उनमें था वो भी जिम्मेवार है। और अगर ऐसे ही ये चलता गया तो मैं आपको एक बात वार्निंग दूं कि कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकल जाएगा।
फारूक अब्दुल्ला से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। तेलंगाना विधानसभा ने कल पिछड़े मुसलमानों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण बढ़ाने के लिए लाया गया एक विधेयक पारित कर दिया। इसमें मुस्लिम तबके के लिए आरक्षण 4% से बढ़ाकर 12% और एसटी तबके के लिए 6% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव किया गया है। मगर क्या इसे लागू कर पाना संभव है? पूरे ब्यौरे के साथ बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
मुसलमानों को आरक्षण देना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस के वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी 5% आरक्षण विधानमंडल ने पारित किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको मंजूरी नहीं दी। कोर्ट के कहने पर आरक्षण 5 से 4% कम कर दिया गया, क्योंकि देश में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। फिर भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस मामले को बढ़ाने से 2 अहम सवाल खड़ा कर दिए हैं। पहला ये कि क्या कोर्ट इसको हरी झंडी दिखाएगी जब आरक्षण 62% तक पहुंच गया हो, और दूसरा इससे क्या चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। हमने प्रोफेसर मडभूषी श्रीधर से बात की, जो नेशनल लॉ स्कूल के प्रोफेसर रह चुके हैं और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के सदस्य हैं।
तेलंगाना गवर्नमेंट हेडेड बाय चंद्रशेखर राव इज क्लेमिंग दैट इट हैज एनफ एविडेंस टू शो दैट।
तेलंगाना सरकार का मानना है कि उसके पास काफी सबूत है कि मुसलमान एक पिछड़ा समुदाय है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि यह मामला न्यायिक जांच के बिना सुलझा सकता है, क्योंकि लोगों में एक संदेह है कि ये एक राजनीतिक खेल है। ये थे प्रोफेसर मडभूषी श्रीधर के शब्द। कल के आरक्षण विधेयक को बीजेपी को छोड़कर हर राजनीतिक पक्ष ने समर्थन दिया, लेकिन फिर भी विधान परिषद में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शबीर अली इस मामले को अलग नजरिए से देखते हैं।
100% उनको 100 लोगों को उठा रहे हैं और इसको पोलराइजेशन कर रहे हैं कि बैकवर्ड क्लास मुसलमानों के बीच में, दलित और ट्राइबल के बीच में ये लाएंगे कि देखो तुम्हारा रिजर्वेशन मुसलमानों ने किया।
राजनीतिक विश्लेषकों में भी इस मामले पर डर है कि इस आरक्षण विधेयक से कुछ खास नहीं होने वाला है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक किंग सुकनाग ने कहा,
मेरे को लगता नहीं कि ये आरक्षण एक्चुअली हो पाएगा। गेम है, टीआरएस बोलता है मुस्लिम के लिए है, ये भी बोलेंगे कि देखो ये सूडो सेक्युलरिज्म कर रहे हैं और रिलीजन के नाम पे रिजर्वेशन दे रहे हैं जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन नहीं है। तो ये पूरा पॉलिटिकल गेम है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा मुस्लिम में, जो बैकवर्ड मुस्लिम होगा, उसको आरक्षण तो नहीं मिलेगा।
लेकिन वरिष्ठ पत्रकार तंकशाला अशोक इस मामले को अलग नजरे से देखते हैं।
नहीं, ये प्रोपेगेंडा जो है बीजेपी ने शुरू कर दी है अभी, मगर जो है सोसाइटी से कोई रिएक्शन नहीं है, तो उनके लिए कोई फेवरेबल रिएक्शन तो नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि तेलंगाना सोसाइटी आज जो है बहुत सेक्युलर है।
एक बात जो इस मामले में स्पष्ट हो रही है कि यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे किसका फायदा होगा वो अगले 2 साल के बाद ही पता चलेगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के अखबारों पर। तृप्ति श्रीवास्तव अखबारों के साथ स्टूडियो में है। तृप्ति, क्या है आज के अखबारों?
जी अपूर्व जी, सबसे पहले मैं बात करूंगी हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसमें उन्होंने हेडिंग दिए पहले पेज पे कि कश्मीर का वीडियो वॉर जो है वो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। रविवार को भी 2 और वीडियोज़ आए हैं जिसमें काफ़ी हिंसा करते हुए दिखाया गया है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया में कल सबसे ज़्यादा शेयर भी वही किए गए थे। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जो कथित तौर पर मानव शील्ड बना के जिस व्यक्ति को भारतीय सेना ने गाड़ी पे बोनट पे बांध के घुमाया था, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और शायद आज अरुण जेटली भी इस मुद्दे पर आर्मी कमांडरों से बात कर सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस की हम बात करें तो ऑल मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की 3 तलाक के मुद्दे को उन्होंने पहले पेज पे, हालांकि सभी ने जगह दी, पर उन्होंने इस पर लिखा है कि बोर्ड ने कहा है कि जो मुसलमान 3 तलाक का गलत इस्तेमाल करते हैं उनका उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना होगा। एक दिलचस्प खबर मैं आपको जरूर दैनिक भास्कर की भी बता दूंगी कि ITBP ने 85,000 बुकलेट छपवाकर जवानों की पत्नियों को एक अनोखी सलाह दी है कि वो अपने पति को दूसरी शादी की इजाजत ना दें, और इस पे उनके पत्नियों के राइट्स और ड्यूटी के बारे में भी बताया गया है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखबारों की सुर्खियां बांटने के लिए आपका त्रिपुर श्रीवास्तव।
खबर सच है अगर BBC पर है।
पाकिस्तान में पिछले हफ्ते मर्दान शहर की अब्दुल वली यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के एक छात्र की उसी के साथियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। उस पर ईश निंदा का आरोप लगा था। इस घटना की पाकिस्तान में खूब निंदा हुई, मगर क्या इतना काफी है? अपनी डायरी में पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्ला खान यही सवाल उठा रहे हैं।
जब सितंबर 2015 में दादरी के अखलाक अहमद को गाय का गोश्त खाने के शक में एक हुजूम ने घर से निकाल के मार डाला, तो इस घटना से भी ज़्यादा दुख इस पे हुआ कि हर मुद्दे पे ट्वीट याने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उंगलियों ने अखलाक अहमद के कत्ल की निंदा करने के लिए ट्वीट करने से इनकार क्यों कर दिया और उन्हें इस घटना पे एक गोलमोल सा बयान देने में 2 हफ्ते क्यों लग गए। पर आज मैं इस दुख में हूँ कि मैंने अखलाक अहमद पे क्यों लिखा, मैं चुप क्यों ना रह सका। इस मुद्दे को लेके मोदी जी को लताड़ना क्या ठीक था? और अब मैं किस मुँह से भारत में गौ रक्षकों की दंदनाहट और लाइसेंस टू किल की खुली छूट पे लिखूं, जब मेरे ही वतन के एक शहर मर्दान की खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के एक 23 वर्ष के छात्र मिशाल खान को उसी के साथ पढ़ने वाले छात्रों ने इस शक में मार डाला कि उसने इस्लाम की तौहीन की है। गोली मारे जाने के बाद मिशाल के शव को घसीटा गया और उस पे डंडे बरसाए गए और इस कारनामे में सिर्फ 1500 गुसीले छात्र ही नहीं थे बल्कि यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन, फिजिकल इंस्ट्रक्टर और एक क्लर्क भी आगे आगे था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री परवेज खटक ने भरी असम्बली में कहा कि मिशाल खान और उसके 2 घायल दोस्त अब्दुल्ला और ज़ुबैर निर्दोष हैं। फिर भी मिशाल के जनाजे में यूनिवर्सिटी का कोई कर्मचारी, कोई सरकारी अफसर या नेता शरीक नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा पे इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसके लीडर इमरान खान का पहला अफसोस वाला ट्वीट घटना के 20 घंटे बाद सामने आया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी सपुत्री मरियम नवाज ने तीसरे दिन ये ट्वीट किया कि जो हुआ बुरा हुआ। उधर इस्लामाबाद की पार्लियामेंट में भी किसी ने धार्मिक तौहीन का झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को कड़ी सज़ा देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं की, बस मरने वाले के लिए दुआ हुई और बैठक उठ गई। मिशाल खान भी बचा खान का भक्त था। उसे मारने वाले पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन के जोशीले भी बचा खान को अपना बाप मानते हैं। वो बचा खान जिन्होंने पूरा जीवन ये समझाने में कुर्बान कर दिया कि मसला बंदूक से नहीं दलील से सुलटाना चाहिए, हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है। सब लोग कहते हैं कि बचा खान का देहांत 29 वर्ष पहले 20 जनवरी 1988 को हुआ। ज़रूर हुआ होगा, पर मुझे लगता है कि बचा खान अपने नज़रिए समेत 5 दिन पहले खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में अपने ही भक्तों के खून में रंगे हाथों दफन हो गए।
और नमस्कार भारत में अब समय है खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस अंक में चर्चा बीसाई परिणीत द्वारा जीते गए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की और समीक्षा भारतीय हॉकी टीम की जो इसी महीने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएगी। लेकिन क्या भरोसा भी जगा पाएगी कि तमाम सुविधाओं के बावजूद क्यों अभी भी बड़े टूर्नामेंट में पिछड़ जाती है? और बात होगी IPL की भी। शुरुआत बैडमिंटन से। कल सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले खेले गए, जहां पुरुष एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में भारत के बीसाई परिणीत ने भारत के ही किदाम्बी श्रीकांत को 55 मिनट के संघर्ष के बाद 17-21, 21-17, 21-12 से हराया। महिला एकल वर्ग का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताइजू यिंग के नाम रहा। खिताबी मुकाबले में उन्होंने चौथी वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना बारिन को 38 मिनट में ही 21-15 से बात दी। बीसाई परिणीत की खिताबी जीत पर पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना कहते हैं,
बीसाई परिणीत वो थोड़ा रिएक्टिव गेम खेल रहे थे, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे पहले गेम में, पर दूसरे गेम से उन्होंने नेट के ऊपर इनिशिएटिव लेना शुरू किया, नेट से ओपनिंग बनानी शुरू की और जब मौका मिला अटैक किया और वो जो नीति थी उससे काफी उनको फायदा हुआ, क्योंकि श्रीकांत वो इसी तरह से ओपनिंग क्रिएट कर रहे थे और फिर फिनिश के लिए जा रहे थे जिससे उनको काफी फायदा हो रहा था और जो साई प्रणीत थे वो ज्यादा डिफेंस पे नजर आ रहे थे पहले गेम में, पर दूसरे गेम में उन्होंने अपनी रणनीति जो है वो बदली जिसका काफी फायदा हुआ।
और अब समीक्षा भारतीय हॉकी की। पिछले दिनों सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान किया गया। सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन मलेशिया में 29 तारीख से किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में मेजबान मलेशिया और भारत के अलावा ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान की टीम हिस्सा लेगी। भारत इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 29 तारीख को ग्रेट ब्रिटेन से खेलेगा। भारत साल 1985, 1991, 1995 और 2009 में चैंपियन रहा है, तो साल 2010 में दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त विजेता भी रहा। उसके बाद अगले 5 साल तक भारत फाइनल में नहीं पहुंचा। पिछले साल फाइनल में पहुंचा तो सही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 4-3 से हरा दिया। इसी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी हराया था और उसके बाद भारतीय टीम रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से 3-1 से हार गई। रियो में भारत को ग्रुप स्टेज में जर्मनी के हाथों 2-1 से और नीदरलैंड से भी 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। पिछले लंबे समय से विदेशी कोच और तमाम आधुनिक सुविधाएं मिलने के बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत रहा है, जिनमें विश्व कप भी शामिल है। पिछले विश्व कप में भारतीय हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही थी। यही बात भारत के पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार को भी चुभती है।
हमेशा मानता चला रहा हूँ, जब तक हम बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, वर्ल्ड कप और ये ओलंपिक के सेमीफाइनल में हम ना पहुँचे, तब तक हमारी हॉकी जो इतना आगे बढ़ने की दिशा में है, उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं, अभी कमी है। छोटे टूर्नामेंट में ही हम अपने आप को बड़ा साबित करके एक उम्मीद जगा देते हैं कि हाँ, अगले में अच्छा करेंगे। तो ये अगला जो है कब खत्म होगा, ये देखने के लिए आतुर हैं, बेताब हैं। अजलान साहब ऐसे हमारे लिए एक बहुत अहम टूर्नामेंट है, हमेशा हमारी टीम ने इसमें अच्छा किया है, उसको देखते हुए मैं ये कहूंगा पहला टेस्ट है कि हमारी टीम वहां पर कैसा प्रदर्शन करती है।
अब देखना है कि मलेशिया में पी श्रीजेश की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम शाह बनकर उभरती है या नहीं। उधर IPL 10 में कल वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने नीतीश राणा के 53 और कप्तान रोहित शर्मा के नाबाद 40 तथा किरेन पोलार्ड के 39 रनों की मदद से गुजरात लायंस को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने जीत के लिए 177 रनों का लक्ष्य 19.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात लायंस ने ब्रेंडन मैकुलम के 64 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 176 रन बनाए थे। कल ही बेंगलोर में खेले गए दूसरे मुकाबले में राइजिंग पुणे ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 27 रन से हरा दिया। जीत के लिए 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलोर की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 134 रन ही बना सकी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और अब आइए एक नज़र डालते हैं अपनी वेबसाइट bbchindi.com पर, जहां आप पढ़ सकते हैं खबर कि मोदी बार बार गुजरात क्यों जाते हैं, जिसकी चर्चा हमने इस प्रोग्राम में भी की थी, और साथ ही तुर्की में हुए जनमत संग्रह में जो नतीजा आया और उसका अर्थ क्या है, ये अभी हमारे पन्ने पर आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही एक खबर ये है कि बच्चे जो स्मार्टफोन से खेलते हैं, आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, तो इस पर काफ़ी शोध हो रहे हैं। तो लंदन में एक शोध हुआ है और ये शोध कहता है कि अगर आपका बच्चा स्मार्टफोन से खेलने का आदि है तो सतर्क हो जाइए, बच्चे की ये आदत उसकी नींद की दुश्मन है। लंदन यूनिवर्सिटी के एक शोध में पता चला है कि जो बच्चे स्मार्टफोन या टैबलेट के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उन्हें दूसरे बच्चों के मुकाबले कम नींद आती है। अध्ययन में कहा गया है कि टच स्क्रीन के साथ बिताया गया हर घंटा बच्चे की नींद को 15 मिनट कम कर देता है। हालांकि ये अलग बात है कि टच स्क्रीन के साथ खेलने वाले ये बच्चे मोटर स्किल्स के मामले में दूसरे बच्चों को मात देने में आगे रहते हैं। तो दोनों बातें हैं इसमें, लेकिन ये एक चेतावनी अभी आ रही है और इस तरह के शोध अभी हो ही रहे हैं काफ़ी सारे। तो अब सभा समापन का समय है, उससे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। तुर्की में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने को लेकर कराए गए जनमत संग्रह में राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन स्पष्ट बहुमत से जीत गए। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन को जनमत संग्रह में नतीजों के कम अंतर और संवैधानिक संशोधन के दूरगामी प्रभावों को स्वीकार करना चाहिए। अर्दोआन ने अपने भाषण में मौत की सजा को शामिल करने की बात कही थी, जिसको लेकर यूरोपीय यूनियन ने चेतावनी दी है कि इस तरह का कदम तुर्की को सदस्यता देने पर चल रही बातचीत को खत्म करने की दिशा में ले जा सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने कहा है कि उत्तर कोरिया के धमकी वाले व्यवहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी है, जिसमें अब चीन भी शामिल है। जनरल मैकमास्टर अफगानिस्तान में हैं, जहां वो राष्ट्रपति अशरफ गनी से चरमपंथ से निपटने के मुद्दे पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान और आईएस दोनों सभ्य लोगों के लिए खतरा हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही ये सभा अब समाप्त होती है। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। तब तक अपूर्व कृष्ण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।